हरे कृष्णा।
तो हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में उपस्थित हैं इस अनंत रूपा प्रभु।
प्रभु जी इस्कॉन बॉयसी यूएस में हैं। इस्कॉन बॉयसी का जो मंदिर है भाई प्रभु जी ने एस्टेब्लिश किया और उसको अभी भी उसका अध्यक्षता कर रहे हैं।
और प्रभुपाद जी ने खासकर विदेशी भक्तों से कहा था कि साल में एक बार दो तीन हफ्ते के लिए भारत जरूर जाएं। और उनका ये था कि अमेरिका और सब विदेश जो है बहुत ही बड़ी माया नगरी है, भारत में आके जो है हमें अपने क्या कहते हैं फिर से इंग्लिश कहते हैं टू पुट आवर फीट इन द ग्राउंड, हमें क्या लगता है कि ऊपर जो है, जैसे मेरा छोटा भाई कहता है कि अमेरिका स्वर्ग है, यहाँ पर जो है तो भारत में आके जो है फिर से अंग्रेजी कहते हैं रिजुविनेशन वो होता है। तो उसके लिए आप सबका बहुत आभारी हूँ। यहाँ डीडीज को देख के प्रभु जी से मिल के उनके सामने जो है मुझे बोलना भी ठीक नहीं लगता मुझे जितना ज्ञान प्रभु जी का है आप सबको मिलता है। तो कोशिश करूँगा तो शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। आज का है स्कंद 8 अध्याय 20 और 8वां श्लोक है। यैर्यं बुभुजे ब्रह्मन् दैत्येन्द्रिय निर्वर्तभिः तेषां कालो अग्रसन् अग्रसर लोकान् यशोदीगतं भुवि। यैर्यं बुभुजे ब्रह्मन् दैत्येन्द्रिय निर्वर्तभिः तेषां कालो अग्रसन् लोकान् नायशोधिगतं भुवि। यैर्यं बुभुजे ब्रह्मन् दैत्येन्द्रियैर्निर्वर्तभिः तेषां कालो अग्रसन् लोकान् नायशोधिगतं भुवि। शब्दार्थ यह जिनके द्वारा यम यह जगत बुभुजे भोग किया गया भ्रमण हे ब्राह्मण श्रेष्ठ दैत्य इंद्र असुर कुलों में उत्पन्न शूरवीरों तथा राजाओं द्वारा अनिवर्त भी उनके द्वारा जो लड़कर मरने या विजय होने के लिए दृढ़ संकल्प लड़ने या मरने तेषाम ऐसे व्यक्तियों का काल ने अग्रसित हर लिया लोकान सारी संपत्ति भोग की सारी वस्तुओं को नहीं यश यश अधिगतम प्राप्त किया भुवि इस जगत में। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद कृष्णप्रभुपाद की जय। हे ब्रह्मण श्रेष्ठ निसंदेह उन महान असुर राजाओं ने संसार का भोग किया है, ये युद्ध करने से कभी भी हिचकिचाते नहीं थे, किंतु कालांतर ने उनकी कीर्ति के अतिरिक्त उनके पास की हर वस्तु छीन ली उनकी हर वस्तु छीन ली गई और वे उसी कीर्ति के बल पर आज भी विद्यमान हैं। दूसरे शब्दों में मनुष्य को चाहिए कि सब कुछ छोड़कर सुयश अर्जित करने का प्रयास करें। तात्पर्य इस संदर्भ में चाणक्य पंडित भी कहते हैं, चाणक्य श्लोक 34 आयु क्षण एको अपि न लभ्य स्वर्ण कूट भी। मनुष्य की आयु अत्यंत अल्प है, किंतु यदि कोई इस अल्प आयु में ऐसा कुछ कर लेता है जिससे उसका यश बढ़ता है तो वह लाखों वर्ष तक जीवित रह सकता है। अतएव बलि महाराज ने यह तय किया कि वे अपने गुरु के इस आदेश का पालन नहीं करेंगे कि वामन देव को दिए गए वचन से वे विचलित हो जाएं। उल्टे उन्होंने तय किया कि वे अपने वचन के अनुसार भूमि देंगे जिससे 12 महाजनों में उनकी भी गणना सदा होती रहे। बलिर्व्यास की वयम हरे कृष्ण। तो ये जो प्रसंग है आप सब उससे परिचित हैं, फिर भी एक बार कि बलि महाराज के पास वामन देव आए हैं और वामन देव ने उनसे 3 पग भूमि मांगी थी। तो बलि महाराज देने को तैयार हैं, मगर उनके गुरु शुक्राचार्य वो उनको मना कर रहे हैं और उसकी कथा शायद पहले आ चुकी है। तो यहाँ पर बलि महाराज जब शुक्राचार्य ने कहा कि ये तो वामन के रूप में स्वयं विष्णु है, तुम्हारी सब चीज ले लेंगे तो इनको मत दो, तो पहले प्रभुपाद जी कहते हैं एक भी श्लोक के तात्पर्य या दूसरे के में कि बलि महाराज सोच में पड़ गए। उन्होंने एकदम ना नहीं कही शुक्राचार्य को, वो जो है उन्होंने कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गए कि मैं क्या करूं, क्योंकि एक तरफ गुरु के शब्दों के गुरु के आगे की अवहेलना और दूसरी तरफ स्वयं भगवान खड़े हैं। तो उन्होंने तुरंत उत्तर नहीं दिया, सोच के फिर उन्होंने जो है ये उत्तर दिया कि वो जो वामन देव मांग रहे हैं वो भूमि वामन देव को दे देंगे। तो उसका वो यहाँ पर अपने गुरु से जो उन्होंने ये निर्णय लिया उसके बारे में बता रहे हैं कि क्यों निर्णय लिया। तो वो कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ कि मैंने जो है इसमें क्या कहते हैं जो उनके पास ये जो धुन चल रहा था दिमाग में मन में कि एक कि अगर धुन ये भी था कि गुरु की आज्ञा का क्या अवहेलना करना है उसकी भी उन्हें एक तरह से अपकीर्ति मिलती या श्राप मिलता जो उन्हें मिला, और दूसरी तरफ भगवान को सब देने का। तो उनका ये निश्चय किया कि जो है कि या तो मैं भगवान को अभी दे दूं या वैसे ही देना पड़ेगा कि जब मृत्यु आएगी तब भगवान हर कुछ चीज हर लेते हैं। तो और ये है कि हर एक मनुष्य यश चाहता है, हम में से बहुत ही कुछ कम होंगे कहते हैं बिरले लोग कि जो जिनके मन में ये भावना नहीं होती कि मेरी प्रशंसा हो मेरा यश हो, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो उन्होंने ये सोचा कि मेरे कुल में 80 राजा हुए, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, और उनकी कीर्ति किस लिए थी कि उन्होंने विष्णु के विरोध में लड़े थे, विष्णु से लड़े थे। और दूसरी तरफ देखिए प्रहलाद महाराज वो भी उनके कुल में से थे। तो उन्होंने कहा उनके मन में था कि कि जो है रूपा जी कह रहे हैं कि अंग्रेजी में जो पढ़ते हैं कि उन्होंने यह निर्णय लिया कि मैं यश लूंगा तो जो अच्छा यश, अब से मतलब देखिए कि एक तरफ ऐसे कई उदाहरण हैं कि रावण उसका भी यश बहुत है और दूसरी तरफ हनुमान जी का, कौन सा यश ज्यादा सुप्रसिद्ध है और कौन सा यश ज्यादा सराहनीय है? हनुमान जी का। क्यों देखा जाए तो हनुमान जी तो लंका जलाई थी, जलाना कोई अच्छा काम नहीं होता। अभी यहाँ पर कोई आके आतंकवादी दिल्ली को जला दे तो उसको यश मिलेगा क्या? देखिए कहने को रावण ने सोने की लंका की और सब कुछ किया मगर यश किसको मिला? हनुमान जी को। वो क्यों मिला? क्योंकि गुस्सा करना, आग जलाना, ये करना, ये सब निंदनीय क्या कहते हैं कार्य हैं, मगर उन्होंने क्योंकि भगवान के लिए किया है? जो है ये तो हम इसका उदाहरण देते हैं कि हम सब कहते हैं कि कोई भी रास है, कोई भी जो चीज अगर हम भगवान में लगाएं तो वो अच्छी आती है। तो इसका जो है प्रश्न पूछा, कहते हैं कि जो हम कहते हैं कि जो गुस्सा है, क्रोध है, उससे आदमी नरक पहुंचता है, मगर क्या गुस्सा भी जो है भगवान के कार्य में लगा सकता है? तो प्रभुपाद जी उसका ये उदाहरण देते हैं कि हनुमान जी ने गुस्से में आके लंका जलाई थी और इस उसका उनको श्रेय मिला था। तो बलि महाराज ने अपने कुल की एक तरह से प्रथा को देखकर कि जो है मेरे कुल में इतने बड़े बड़े असुर हुए हैं, उनको कीर्ति मिली है, तो मैं भी जो है यश लूंगा। और वो कैसे लूंगा? कि भगवान को ये दान देकर, भगवान को दान देकर। और उनको मालूम था एक तरह से कि गुरु कह रहे थे कि भगवान सब ले लेंगे तो उस जो है भूखा हो जाएगा ना, भूखा नंगे कैसे है? तो उन्होंने जो है क्या कि मेरी वैसे मृत्यु होगी और तब सब चला जाएगा, तो अब मैं इसको देख के इसका यश ले लूँ। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसीलिए तो देखिए रिस्क ये था उसके अंदर, उसमें ये रिस्क, रिस्क की हिंदी क्या होगी है? हाँ, कि सब कुछ ले लिया था वो, तो जैसे कहते हैं ना कि वो भुखमंगे होकर सड़क पर आ जाते हैं, मतलब ये रिस्क था उनका, मगर ये नहीं हुआ। और उन्होंने आत्मनिवेदन कर दिया और फिर भगवान भूलते नहीं है इस चीज को है? और दो चीजें हुई कि भगवान ने जब ये देखा आत्मसमर्पण, तो भगवान ने खुद कहा कि मैं नीचे भेज रहा हूँ, मैं वहाँ तुम्हारे द्वारपाल की तरह खड़ा रहूँगा। और क्या कहते हैं प्रभुपाद जी लिखा है कि उन्होंने जो है उनकी गणना 12 महाजनों में आती है। तो हम बलि महाराज के पद पर चल सकते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम सब अपने गुरु की अवहेलना करेंगे कि जो है उन्होंने जो है शुक्राचार्य एक ऐसे प्रमाणिक गुरु नहीं थे, उनके नाम से मालूम पड़ता है कि जो है प्रोफेशनल डिस्प्रोपोजन कहते हैं अंग्रेजी में। और तो क्या इसके लिए जो चीज में ये मैं थोड़ा चर्चा करना चाह रहा था कि यहाँ जो है यश की बात आई है और यहाँ पर भाई चाणक्य पंडित की भी कह रहे हैं कि हमारी आयु बहुत छोटी है क्षणभंगुर, और उसमें जो है हमें अपने समय को बड़े ध्यान से बिताना चाहिए, क्योंकि वो जो समय बीत गया वो फिर वापस नहीं आ सकता। चाहे कितना ही सोना चांदी आपको इतने पैसे दें कुछ करें, वो वापस नहीं आ सकता। तो इसलिए हमें अपनी इस छोटी आयु में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमें यश मिल जाए, लोग याद करें। तो यश भी देखिए, जो फेम कहते हैं, एक तो मटेरियल फेम, सांसारिक बहुत सारे नाम हैं जो यश मिलता है। देख लीजिए, बिल गेट्स हैं, अंबानी जी हैं, अमिताभ बच्चन हैं, और कौन कौन है, एक तरफ ये यश हैं, तो गांधी जी आते हैं उनका यश है, और दूसरी तरफ हमारे ध्रुव महाराज हैं, प्रहलाद महाराज हैं, सारे बारह महाजन हैं, श्रील प्रभुपाद हैं। तो एक यश जो मिलता है, जो मटेरियल यश, ये जो है क्षणभंगुर है। गांधी जी ने देश के लिए इतना किया, मगर भगवान के लिए नहीं किया इतना। अब उसका क्या नतीजा है? गांधी जी का यश अब भी है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। बल्कि बहुत से मुझे ये ताज्जुब होता है कि अभी इनको गए हुए गांधी जी कितने 60-70 साल हुए, उसी में जो है लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। अब उसमें नहीं पढ़ेंगे जो भी कारण है कि शिरोधारा जयकरण की जाए। तो क्योंकि, और इसी के लिए कृपा जी ने गांधी जी को लिखा भी था कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया, देश को आजाद कर दिया, अब आप उससे भी बड़ा कार्य करिए कि ये सारी जो भारतीय जनता है इसको भगवान में लगाइए, और आप में ये शक्ति है। मगर गांधी जी ने नहीं सुना, और ये पत्र लिखने के बाद कुछ दिनों बाद ही गांधी जी की हत्या हो गई। और दूसरी तरफ देखिए श्रीला प्रभुपाद, एक चीज गांधी जी को ज्यादातर लोग हिंदुस्तान में जानते हैं, बाहर थोड़ा उनको आइडिया है, मगर वो जैसे महानता नहीं मालूम। और दूसरी तरफ श्री प्रभुपाद भी उसी समय के हैं, थोड़ा फर्क था। और दूसरा देखिए प्रभुपाद जी कि उन्होंने भी एक तरह से मेरे विचार में हिंदुस्तान को आजाद किया। किसी से आजादी दिलाई? हाँ, इग्नोरेंस। और अगर गांधी साहब देखे तो गांधी जी ने तो अंग्रेजों को भगाया, मगर अंग्रेज अपनी अंग्रेजी नहीं छोड़ गए थे, हैं, ठीक बात है, और अब भी है। और गांधी जी ने क्या किया कि वाकई में सफाई जो है ना, वो के झाड़ू का चिन्ह है, हमारे दिल से जो पश्चिमी सभ्यता है, जो अंग्रेजी जो छोड़ गए थे, उसकी सफाई शुरू की। और प्रभुपाद जी उसी के लिए, और ये माने वो एक जैसे कह सकते हैं, मगर प्रभुपाद जी जो ऑब्जेक्ट कृष्ण लाए हमारे जीवन में, उसके लिए हमारे जीवन में नहीं और बाहर सब भी उसके लिए वो प्रसिद्ध हैं और प्रसिद्ध रहेंगे। कि एक जो थॉमस जेंकिंस करके प्रोफेसर, उसने प्रभुपाद जी के बारे में श्रद्धांजलि दे रही है कहा कि ही वाज सच एन अमेजिंग पर्सन, और उन्होंने इतना किया कि हिंदी, पहले अंग्रेजी में, यहाँ हिंदी बता दूंगा कि 10,000 years from now, people would not believe that such a person could exist or was there. यहाँ से 10,000 साल बाद लोगों को ये विश्वास नहीं होगा कि प्रभुपाद जी जैसे भव्य, क्या कहते हैं, दिव्य आत्मा से संसार में थी. अब उसमें देखिए कि प्रभुपाद जी ने कभी, प्रभुपाद जी को यश कैसे मिला. प्रभुपाद जी अपने शब्दों में खुद कहते हैं कि उनको यश इसलिए कि वो कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल नासमझ मूर्ख था, है? मुझे अगर मेरे में कोई गुण था या है, वो ये क्या क्या गुण है कि मैंने गुरु ने जो मुझे आदेश दिया था उसको पालन करने की कोशिश कर रहा हूँ. ये बिल्कुल एक से एग्जैक्ट शब्द है कि मैं सिर्फ दोहरा रहा हूं, मैंने कोई नई चीज नहीं की, मैं आचार्य ने जो बताया दोहरा रहा हूं और जो मेरे गुरु ने कहा था उसकी कोशिश कर रहा हूं, और गुरु की जो आज्ञा उसी का बल है कि ये जो मैं कुछ कर पाया हूं. तो प्रभुपाद जी को यश उससे मिला, मगर उन्हें कभी यश की कहते हैं प्रेरणा या इच्छा नहीं की. अब वो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखेंगे कि अपने नेक्टर इंस्ट्रक्शन में, उपदेश अमृत में वो है अत्यहार प्रयास कि उसको बताया गया कि जो है हमें ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए. और उसमें जो है कौन कौन से प्रयास बताए गए अत्याहार का, ये सबसे ज्यादा प्रसाद हम नहीं खाना चाहिए. मगर भक्तिनाथ ठाकुर वो अपने उपदेशमृत के भाष्य में लिखते हैं कि छह तरह के प्रयास होते हैं. प्रयास का मतलब कि ज्यादा किसी चीज के लिए ज्यादा कोशिश करना होती है ना, हड़प कि मुझे पैसा मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे जमीन मिल जाए, मुझे खूब ज्ञान आ जाए. इस तरह की छह प्रयास होते हैं उसका अत्याहार. फिर ज्ञान का प्रयास और धन का, उसके बाद धन ये मगर उन छहों में एक छोटा प्रयास जो है वो है यश का. आदमी बहुत कुछ करता है कि मुझे किसी तरह मेरा नाम हो जाए, पेपर में नाम आ जाए, कुछ भी आ जाए, इंटरनेट पर सब जो है बहुत करते हैं. आजकल खूब चल रहा है नहीं, फेसबुक पर, आप सब फेसबुक पर होंगे, हैं? मैं नाम के लिए हूँ क्योंकि मंदिर के जैसे मुझे बिल्कुल नहीं मालूम. मेरा एक प्रभु जी आए थे कि प्रभु जी आप जो है, आप सब जानते होंगे कि मेरी जो है फेसबुक पर जाके मुझे वो कर दीजिए लाइक. बोले प्रभु जी कि मेरे पास अभी जो है कितने, वो उस समय कह रहे थे कि करीब 5,000-6,000 हैं, तो मैं 10,000 की कोशिश कर रहा हूं. मैं 10,000 की कोशिश कर रहा हूं. ये आजकल के बच्चों में है, इसी में यश की मेरे फेसबुक पे कितने लाइक्स हैं, कितने दोस्त हैं मेरे. आप कितने दोस्त हैं? काउंट नहीं है. इसका माने कम है या बहुत है, दोनों ही हो सकती है. ये कहा गया है किसी ने रिसर्च की थी कि, और सब माताएं बैठी हमसे बैठे हैं, सबके परिवार हैं, सबके घर हैं, कि किसी मनुष्य के लिए स्वाभाविक है ही नहीं इसमें वो कि 200 नाम से ज्यादा वो याद रख नहीं सकता। मुझे तो 50 भी नहीं याद होते, जब प्रभु जी मिलते सबको देखा हुआ शक्ल याद रहती है, नाम याद नहीं रहते। कि जो है हमारी कैपेसिटी, जो कोई अच्छा सेल्समैन होगा वो शायद 250 नाम याद कर ले, तो सेल्समैन की उसको ही बनाते हैं कि उसको कस्टमर का नाम, ग्राहक का नाम याद रहता है। और आजकल होड़ चली है बच्चों में, ये सबसे बड़ा यश है जो ये, और जो है और इस पर भी अभी बच्चों के बारे में जो कह रहे हैं उनको और बताएंगे कि जो है कि ये कि बच्चे पागल हो जाते हैं कि उसके पास 80 हैं, मेरे पास 50 हैं, बजाय पढ़ाई के इसमें कोशिश करते हैं कि भैया तू जो है मेरे फेसबुक पर आ जाओ। प्रभुपाद जी ने हमें दी कृष्णा बुक, मैं सबसे कहता हूँ ये फेसबुक की जगह कृष्णा बुक। तो तो भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि छहों प्रयास में सबसे निम्न कोटि का प्रयास, थोड़ा प्रयास करना बुरा नहीं है, मतलब तो कह रहे सबसे निम्न कोटि का प्रयास कौन सा है, यश का प्रतिष्ठा प्रयास, सबसे निम्न कोटि का। और वो ये भी लगते हैं कि भक्तों को उनका मालूम है कि भक्तों को सबसे ज्यादा इस प्रयास से क्या कहते हैं केयरफुल बचना चाहिए। धन्यवाद। देखिए चतुर महाभुम का है ना, न धनम न जन्म न सुंदरी कविता वाजगत काम है, उसमें जो ये जन्म कि मेरे कितने शिष्य हैं, तो ये जो भक्तों में वो भक्तों और ठाकुर इस पर कहते हैं, और उन्होंने भी कहा है कि ये यश का प्रयास भक्तों में क्या होता है कि मैं भी गुरु बन जाऊं। एक तरह से चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि सब गुरु बनिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हैं? भगवान कृष्ण को जानना पड़ेगा वाकई में। जो तिलका के जो सबको कृष्ण दो देने के लिए जो है और ये मैं कह सकता हूँ बोजी मंदिर का टेंपल प्रेसिडेंट ये वो जब सोल आते हैं लोग प्रभु प्रभु जी करते हैं तो एक बार दिमाग ख्याल आ चुके हैं। फिर जब महाराज को देखता हूँ कि 20-20 21-21 घंटे जिस तरह महाराज लगे रहते हैं इतने शारीरिक कष्टों के बावजूद, अभी बॉयज ही में आए थे, इतने थके हुए आए थे शरीर में, फिर भी मंगल आरती में सब कुछ मैंने सबसे बात करना ही करना, तुमके देखते आता नहीं, मैं मेरी पोजीशन हुआ नीचे अच्छी है। तो हमारा व्यावहारिक तौर पर जो है इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है हमारी पोजीशन क्या, दास दास दास, उसी में यश मिलेगा, उसी में हमको यश मिलेगा। तो बलि महाराज ने भी जो है यही जो कहने बलि महाराज को यश मिला वो एक तरह से मगर वो कहते हैं एक्सेप्शन टू द रूल, उनका एक्सेप्शन था कि उन्होंने जो है क्योंकि गुरु असली गुरु कौन है, जो है जो कृष्ण का सेवक हो, विष्णु का सेवक हो। तो इसलिए जो भली महाराज ने किया, क्योंकि महाजन ये है जो शास्त्र के विरुद्ध में नहीं जाते, तो ये कोई कह सकता है कि आप कहते रहो ये भली महाराज है, आप ये कह रहे हैं कि गुरु की सेवा करनी चाहिए, तो ये भली महाराज महाजन कैसे बन गए? और ये तो बड़ा गलत काम किया। नहीं, क्योंकि वह गुरु जो हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि प्रभुपाद जी उनको सस्सु महाराज ने ये प्रश्न पूछा था, सस्सु महाराज ने प्रभुपाद से प्रश्न पूछा था 1968 में, एक चिट्ठी लिखी थी कि बलि महाराज को जो है जो उन्होंने सब किया। तो प्रभु जी एक चीज कहते हैं कि जो है शुक्राचार्य अपने प्रवचनों में और सब में बताते हैं सबको कि जो है विष्णु की पूजा करनी चाहिए। और प्रभु जी लिखते हैं कि मगर जब समय आया कि विष्णु सामने खड़े हो गए, तो ये ना कि जो आप कहते हैं उसको करके, तो जब विष्णु सामने खड़े हो गए तब वो अपने शिष्य से कह रहे हैं कि इस विष्णु को समर्पण मत करो। तो इसलिए शुक्राचार्य जी गुरु होते भी गुरु नहीं थे, क्या कहते कैसे ये कि प्रमाणिक गुरु नहीं थे। तो इस चीज पर जो है क्या कहते हैं, हमें मनन करना चाहिए कि जो है यश से एक तरह से, जब यश आएगा अपना आप आ जाएगा, यश जब आएगा। और हमारे शास्त्रों में यश, जिनको भी यश मिला है आप देखेंगे उसमें एक कंडीशन होगी कि सबने गुरु की सेवा की। वो लिखते हैं कि ध्रुव महाराज भी यश के लिए गए थे, चाहते थे कि मैं ब्रह्मा जी से भी बड़ा उनको राज मिल जाए, वो एक वो चीज हुई। और यश कैसे मिला उनको, जब उन्होंने गुरु ने जो कहा उसका उस आदेश का पालन किया है। नारद मुनि ने कहा कि जंगल में जाके 6 महीने जो है मिट्टी के भगवान जी बना के उनकी सेवा करना, ऐसे ऐसे करना, पहले ये छोड़ना, बाद में जो है खाली पत्ते खाना, पाली ये करना, और 6 महीने में भगवान सामने उनको चला दिया। और सारा उन्होंने राज्य लिया ही नहीं, और भगवान ने उनको जो है वो जो है ध्रुव तारा दे दिया। प्रहलाद महाराज जितने भी देखेंगे आप, उन सबको यश मिला है, वह उसमें गुरु की आज्ञा का पालन करने में, गुरु की सेवा करने से। या थोड़ा सा विराम लेके किसी के पास कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी है या कोई माइक दे दीजिए, मुझे थोड़ा कम सुनाई पड़ता है।
तो जैसे यश को सबसे निम्न कोटि का वो बताया गया, तो ऐसा इसमें क्या है कि निश्चित रूप से निम्न है प्रतिष्ठा के लिए अत्यधिक प्रयास करना, परंतु इसको तुलनात्मक रूप में सबसे नीचे क्यों बताया गया बाकी सभी?
क्योंकि यश से क्या होता है, मन अहम आता है, घमंड आता है। गीता में लिखा ही है ना कि जो है क्रोध और घमंड ये सब कहाँ के रास्ते हैं, नरक। और यश एक अपना मिलेगा, वो कभी कभी सारे केसों में वो मिलता है जब आदमी दूसरे लिखता है कि इसमें कितनी विनम्रता है। अभी हमारे बिजनेस सर्कल्स में अब तो वो थोड़ी पुस्तक पुरानी हो गई, मगर अभी भी उस पर कोर्स देते हैं। एक है लेखक जिम कॉलिंस करके, उसकी किताब है, उसका नाम है फ्रॉम गुड टू ग्रेट, सब अच्छे होते हैं उससे फिर महान कैसे बनते हैं। तो उसने जितने भी अमेरिका में करीब 100-200 जो सबसे अच्छी कंपनी थी, मैं सक्सेसफुल कंपनी है, उनके जो सीईओ थे, जो प्रमुख थे, उनके उनकी थोड़ा जीवन का विश्लेषण किया कि कंपनी क्यों अच्छी बनी, क्योंकि इसके पीछे एक अच्छा सीईओ था। आप सब लोग सीईओ समझते हैं। और फिर उनका तो देखें कि सीईओ के क्या गुण है जिससे वो इतना अच्छा बने, उसकी कंपनी अच्छी बनी, कोई बताया जाएगा कि उनके विचार में वो क्या गुण है, कौन सा गुण उसने बताया कि सब में उनमें था। है जी, हाँ, दैट इज गुड। हाँ वो भी है, बहुत अच्छी बात है। एक चीज और थी, और वो चीज है जो गीता में लिखी गई है, है? विनम्रता, ह्यूमिलिटी। और वो ह्यूमिलिटी क्या थी कि वो उन्होंने कभी खुद अपने में श्रेय लिया, अपने जो कार्यकर्ता थे, अपने जो एम्प्लॉयज थे, उनसे कहा कि नहीं इन्होंने काम अच्छा किया, ऐसे ना। कहने को बिजनेस में ये कहा जाता है कि आपको बड़ा अग्रेसिव होना चाहिए, और जबकि जो भक्त लोग मेरे पास आते हैं जो बिजनेस में हैं कि प्रभु जी कि आज मेरा जो है वार्षिक रिव्यू हुआ, और उसमें मैनेजर ने बॉस ने ये कहा कि तुम अग्रेसिव नहीं हो, तुम बड़े शांत हो, ये सिखाया था कि जाके लड़ो, जाके लोगों को बढ़ाओ, माने ये भेजो, वो भक्त का गुण नहीं है, सिर्फ किताबें डिस्ट्रीब्यूशन में है, होना चाहिए कृष्ण के देने के लिए। तो वो जो है तो ये चीज आती है, मगर उन्होंने कहा कि नहीं, जो अच्छे सीईओ वो काम करवाते हैं, मगर उनमें एक कहते हैं बेसिक, माने एक गुडनेस, अच्छी चीज है कि जो है वो घमंड नहीं है उनमें। मगर उसने एक चीज और कही थी जो सेना वाले पकड़ते नहीं है, उन्होंने कहा कि उनमें एक चीज और थी कि ये जो अच्छे लोग हैं, ये अंग्रेजी में सैंडल लिखा था कि दे लुक इनसाइड, है अंदर देखते हैं, जैसे कि उनके अंदर एक कोई काला डिब्बा है, उसके अंदर वो देखते हैं ब्लैक बॉक्स, पर ये नहीं, वो ब्लैक बॉक्स हम सबके पास है। अब उसकी बात कर रहा था अपनी आत्मा की, मतलब कि बट दे सीम टू दे हैव ए ब्लैक बॉक्स विद इन ए ब्लैक बॉक्स, कि लगता है कि उनके दिल में जो है एक के अंदर एक कोई चीज है कि जिसका वो जिससे वो प्रेरणा लेते हैं। जब मैंने पढ़ा तो वो ब्लैक बॉक्स के अंदर, ब्लैक बॉक्स क्या चीज है, सोल तो एक ब्लैक बॉक्स हो गया, उसके अंदर एक और क्या ब्लैक बॉक्स, परमात्मा। तो ये है कि अगर महान बनना है और बनेंगे तो अगर हम अपनी आत्मा या और आत्मा के परमात्मा को सुनेंगे और उसके लिए विनम्रता चाहिए तो सब कुछ अपना आप हो जाएगा। ऐसे ना, नहीं थोड़ा लंबा उत्तर था, और हाँ जी उधर था, बोलिए।
यहाँ पे बलि महाराज जैसे श्लोक में बोल रहे हैं कि सबको रेपुटेशन के लिए देख करना चाहिए प्रयत्न, तो मेरा ये प्रश्न वो बोल रहे हैं कि बाकी सब तो छीन जाएगा, रेपुटेशन आपके साथ रहेगा, मतलब इसका कुछ आगे जाके बेनिफिट होता है क्या रेपुटेशन का? मरने के बाद वो
बेनिफिट तो यही है,
उसके साथ शरीर तो नहीं रहेगा, शरीर तो नहीं रहा अभी, दूसरा
नहीं तो बेनिफिट अगर आपने अच्छा कार्य किया भगवान के लिए किया है, यहाँ सब चीज आ रही कि जो कुछ भी करना है उन्हें आप निवेदन किया भगवान के लिए है? और बेनिफिट तो यही है जैसे कृष्ण खुद कहते हैं और उसके मारे वो बन जाते हैं, तो ये भी लिखा है कि कृष्ण बन जाते हैं जैसे गोपियों से कहते हैं कि मैं इतना इतना ऋणी हूँ कि मैं तुम्हारा ऋण चुका नहीं सकता। बलि महाराज कैसे बोले कि तुमने किया मैं माँ द्वारपाल बन जाऊंगा, तो बेनिफिट वो है। रूपा जी कहते हैं कि और धर्मों में और फिलॉसफी दर्शन में ये है कि हम कि वो भगवान के जो है नौकर हैं, ठीक है ना, कि भगवान यहाँ ऊपर एक राजा की तरह बैठे हैं और हम उनके दास हैं, उनका यह उनसे माने आशीर्वाद मांग रहे हैं और हमारी चरम सीमा क्या है, तो लिखते हैं कि भगवान को रस्सी से बांध देना कि किस धर्म में है, किस धर्म में है कि भगवान को जो है रस्सी से बांधा जा रहा है। उसका मतलब क्या है कि भगवान, क्योंकि भगवान भी डरते हैं कि अरे कल को बन गया है ना तो फिर निकलूंगा कैसे, तो हम उसी से बनते हैं जिसे जानते हैं कि बाद में वो बंधन टूट जाएगा या हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। तो उस तरह की जो सीमा, उस तरह का जो प्रेम है, उस तरह का जो लगाव है, वो हमारे सीमा है। तो वो देखिए बलि महाराज ने सब दे दिया, भगवान ने उनके सिर पर पैर भी रख दिया, नीचे पहुंचा दिया, फिर क्या हुआ, भगवान ने कहा क्या वो क्या कहते हैं इससे पहले श्लोक में है ना, वो कहते हैं कि कहाँ लिखा हुआ कि वो ऐसे हुए संत महात्मा दधीची शिवा के सब कुछ दे दिया आपने, तो वो तो आ जाए। एक हाथ और था जो हाँ जी
हरे कृष्ण मिले प्रभु जी, जैसे किसी भी प्रकार की हम इच्छा को देखें, चाहे काम की इच्छा हो, चाहे धन की इच्छा हो, या इनफैक्ट यहाँ पे यश की इच्छा की बात कर रहे हैं, तो खाली ये सोच के अगर हम कहें, हम समझ जाए कि हाँ ये इच्छा खराब है, इसका कॉन्सिक्वेंसेस खराब है, तो इतना सोच लेने मात्र से इच्छा अपने आप में जाती नहीं है। कि अगर हम ये सोचें कि यश की इच्छा खराब है, हमें नहीं करनी चाहिए, बट इतनी सटल है या उसके बावजूद भी क्रीप इन कर जाती है, तो क्या मेजर्स ले जिससे ये यश की इच्छा एक्चुअली चली जाए। पर एक बार कन्विंस हो गए, पर कन्विंस होने के बाद में भी हम क्या मेजर्स ले जिससे ये चली जाए।
अगर मैं समझ रहा ठीक है प्रश्न, तो प्रभुपाद जी इसमें तो इतना मुझे दिखाई पड़ा, मैं अंग्रेजी जो पढ़ता हूँ तो लिखते हैं कि गुड रेपुटेशन, यश की इच्छा सबको होती है, तो उसको कैसे बदले है कि हम घमंडी नहीं बने, हम जो सब अवगुण है, तो इसलिए प्रभु कहते हैं कि जो है कि अगर हम वो अब जैसे अब वो इस तरह का होगा कि जैसे भक्तों में एक तरह से कंपटीशन होता है कौन सबसे ज्यादा किताबें बांटे, अब वो चीज जो है वो कंपटीशन बुरा होता है, वो कभी अच्छा है क्योंकि उसमें भगवान की यश को फैलाने में, देखिए अगर हम सूर्य अगर हम चाहें कि सूर्य की तरह हमें प्रकाश मिले, सूर्य सबसे प्रकाश चीज है ना यश की, वो तो हम चाहे कितने भी बल्ब लगा लें अपने चारों तरफ वो प्रकाश नहीं आएगा। वो प्रकाश कैसे मिलेगा, अगर हम सूर्य के नीचे खड़े हो जाएं, साइड में खड़े हो जाएं, तो उतना ही प्रकाश मिल जाए। तो जी कहते हैं कि जो है कि कितने भी आप रात को बल्ब लगा लो, सूर्य की तरफ प्रकाश मिलेगा ही नहीं। तो वो यह है कि हाउ कैन आई बिकम ए गुड डिवोटी। एक तो हम चाहते हैं जो रिकग्निशन, जो ये चीजें हैं अपने सर्कल में, अब गुड का ये नहीं कि हम दिखा दिखा के माला कर रहे हैं आज 32 की 36 की जो कुछ भी, मगर अगर लगन से करेंगे जो प्रभुपाद ने चार नियम दिए हैं, जो हमें बताया दिनचर्या वो करेंगे, तो वो अपना आप ही हमारे जो है बॉयजी के अंदर जब भगत लोग आते हैं तो जो हमारे लोकल भगत हैं वो खुद ही कहते हैं प्रभु जी इनके चेहरे से जो है क्या कहते हैं ज्योति निकल रही है, इफल्जेंस दिखाई पड़ता है। अब यहां आप सब बैठे दिखाई पड़ता है मुझे, सूर्य कहने पड़ता है कि मैं सूर्य हूं। तो मेहनत मतलब मेहनत करनी चाहिए, मगर जो है देखिए हिरण्यकश्यप ने रावण ने मेहनत की तो वो अपयश मिला, और हनुमान जी ने भी मेहनत की भगवान के लिए की उनको यश मिला, तो वो चीज है। एक और फिर समय है, दो मिनट बचे, 9 बजे।
हरे कृष्ण प्रभु। भगवान में 6 ऐश्वर्य आप पूर्ण बताती
है जी,
भगवान 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है।
हाँ,
तो प्रभुपाद जी ने ऐसा कौन सा ऐश्वर्य नहीं दिखाया दुनिया को जो भी पूर्ण दिखे?
फिर आगे सब कह रहे नहीं, ये ठीक बोल रहे, मुझे थोड़ा सुनाई कम पड़ता है वाकई में, अभी इतनी उम्र आ गई।
हेलो प्रभु जी, ये भगवान में 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण है, तो प्रभुपाद जी ने ऐसा कौन सा ऐश्वर्य दिए है जो दुनिया को नहीं दिखाया, तो इसलिए प्रभुपाद जी भी पूर्ण हो गए?
नहीं, प्रभुपाद जी पूर्ण है क्योंकि वो भगवान से जुड़े हैं, हम भी जुड़ जाएंगे तो हमें भी वो गुण आ जाएंगे। प्रभुपाद जी जो है कहते ना कि अगर समुद्र के का क्या कहते हैं जो पानी है उसकी एक बूंद लेंगे उसमें वही गुण है जो शायद समुद्र में है। तो अगर है, अगर हम अपने गुरु के पदचिन्ह में चलेंगे, और क्योंकि गुरु भगवान से जुड़ा हुआ है तो वो जो श्रृंखला है तो हमने भी वो गुण आ जाएंगे। मगर जो 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 सबसे बड़ा जो, जो ये देख लीजिए, अब ये एक चीज और आई थी जो बस कर रहा था कि हम यहाँ पर क्यों हैं, यहाँ क्यों आए? हम सब आराम से बैठे थे गोलोक वृंदावन में, साकेत में, जहाँ भी है, यहाँ कैसे आए, यहाँ कैसे टपक पड़े, क्या कारण था बताइए? है क्योंकि हमें ये इच्छा आई, जो कि यश ही है कि भैया हर रोज जो है राधिका रमन की सेवा करनी पड़ती है, मैं क्यों नहीं राधिका रमन बन जाऊं? वन है कि उसका वो देखो वो प्राइम मिनिस्टर बना बैठा है, मैं भी प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। अब यहां पर संसार में तो यह कि जो अच्छा तू बनना चाहता है तुझे जो है कहीं अलग पटक दें या उसको जेल में डाल दें, किससे कर दें? भगवान है, क्योंकि हम सब भगवान की संतान है, तो जो बाप जो है वो नहीं करता, वो कहते हैं अच्छा ठीक है यहाँ तो नहीं तू बन सकता, मैं तुझे नीचे भेज देता हूँ, वहां पर प्ले ग्राउंड है, वहां पर तुम जो है डॉक्टर नर्स जो भी बनना तुम बन जाओ। तो एक तरह से वही चीज है कि हम भगवान बनना चाहते थे तो यहाँ नीचे आ गए, फिर देखा कि अरे ये तो हमारे भूते का नहीं है। तब ये कि जब भूते नहीं होता तो आदमी क्या करता है, उस आदमी से जुड़ जाता है। अब है ना कि जब वो जितने कांग्रेसी हार गए वो क्या कह रहे हैं कि जो बिजनेस में जुड़ जाओ तो उसी में जो है वह हमें यश मिलेगा. पता नहीं इसका डज इट मेक सेंस और नॉट, मगर हाँ जी आपको मिलती है.
हरे कृष्ण.
हाँ
प्रभु जी, मेरी टिप्पणी है कि जैसे छह ऐश्वर्य हैं,
हाँ,
धन ज्ञान रूप यश बल वैराग्य,
हाँ,
तो इसमें पांच तो हमारे कंट्रोल में है कि हम धन को अपनी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं सरलता से, लेकिन यश हमारे कंट्रोल में नहीं है क्योंकि हमें दूसरों के द्वारा प्राप्त होता है,
हाँ,
तो उसको हमको भगवान की सेवा में लगाना थोड़ा कठिन कार्य है. तो इसलिए भी ये निम्न हो सकता है क्या, ऐसा मेरा सोचना उचित है?
नहीं, तो जो यश भक्त करता है कि मैं अपने गुरु को यश दूं, उसी मेरा यश है. तो वो हनुमान जी की यही इच्छा थी कि किसी तरह राम नाम के राम जो हैं उनका नाम सीता जी को देखिए. सीता जी जो है ये सबको मालूम हुआ कि जब वो हनुमान जी आए तो बोले कि मैं तो आपको वापस ले आ सकता हूँ, चलिए पीठ पे बैठ जाइए. सुंदरकांड बड़ा अच्छा इसका वाल्मीकि सुंदरकांड है. तो सीता जी ने तीन या चार कारण दिए कि एक तो मैं दूसरे पुरुष की को छू नहीं सकती, मतलब वो तो रावण मुझे खींच के ले गया था, और दूसरा अगर मैं तुम्हारी पीठ पे बैठ भी गई तो मैं स्त्री या सुहावर डर के मारे मैं समुद्र में गिर जाऊंगी. फिर एक चीज बोली जो कि बहुत ही अच्छी है, बोली कि नहीं, मैं चाहती हूं कि राम जी आए यहां पर जहां कि उनका यश बढ़ेगा. तो हमें वो मिलेगा कि जब हम मैराथन में वैसे भी संकीर्तन में जो है ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें बांटें, प्रभुपाद जी को अगर हम ग्लोरीफाई करेंगे तो वो जो है वो अपना आप ही आ जाएगा.
ठीक है,
हरे कृष्णा. समय हो गया.